आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारल के समय सार गाथा 38 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराय स्वर क्या चकार से चित्त भावाय भावाय सरल भाव।
आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसकी विषय वस्तु की चर्चा कल आरंभ की थी और मैं इस निर्णय पर नहीं पहुंचा था कि कौन सी गाथाएं यहाँ लेनी है, लेकिन शांति भाई जवेरी ने मुझको 38वीं गाथे की तरफ ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने कहा कि मुझे वो पढ़ के बहुत आनंद हुआ है। तो मैंने कहा कि जब शांति भाई को आनंद हुआ तो वो आनंद सबको ही मिलना चाहिए। इस विकल्प से फिर मैंने ये गाथा लेने का निर्णय किया है। ये भाग्य की बात है, मुझे तो लिखे बहुत दिन हो गए ना, ज्यादा ख्याल में भी नहीं था कि इसमें क्या और विशेष विशेष बातें हैं, इसलिए फिर मैंने जाकर उनको पढ़ा कभी शांति भाई को क्या चीज अच्छी लगी है। तो उसमें उन्होंने एक इशारा तो मेरे को किया था क्रम और अक्रम के बारे में, और भी बातें उनने जो इशारा की थी वो इसमें है। वो मेरे से कहते थे सुपर प्रकाशक के मामले में आपका थिंकिंग क्या है वो उन मेरे को स्पष्ट नहीं होता, मैंने वो शांति भाई को वो स्पष्ट नहीं होता, तो वो भी आप इसमें आए। मैंने देखा वो विषय भी इसमें बहुत विस्तार से आया है, मेरे को ख्याल में नहीं था, जब लिखा था तब आया होगा। तो सारी चीजें इसमें आएंगी और इसलिए सहज भाव से जो भी 3-4 व्याख्यान होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। आप लोग भी इसको करीब 20-22 पेज हैं इसमें मैंने जो लिखा है इस गाथा पर, तो आप जो किताब ले लेंगे और पढ़ेंगे तो आपको भी वो सब वस्तु ख्याल में आएगी और अपन उसकी चर्चा करेंगे तो और आनंद आएगा। देखो अब यह प्रश्न उपस्थित होता है, ये प्रश्न यहाँ क्यों ये गाथा आई। पिछली गाथाओं में हम 1 से 37 गाथा तक भी कह सकते हैं अथवा 25 से 37 गाथा तक भी कह सकते हैं, और ज्यादा समेटना हो तो हम 34, 35, 36 और 37 इन 4 गाथाओं के संदर्भ में भी इस गाथा को देख सकते हैं, क्योंकि 34 और 35वीं गाथा में ये बात कही है कि पर पदार्थों का त्याग क्या है, और धोबी का उदाहरण देकर के इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया जो अभ्यासी मोक्षों के लिए अपरिचित बात नहीं है, इसलिए मैं उस उदाहरण में नहीं जाकर के लंबाऊंगा नहीं विषय को। आखिर अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, नानम नियमा मुणे दब्दम, वहां से इस गाथा की जड़ पड़ती है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थों को तो भगवान आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि यह आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। गुरुदेव सिंह ने इसकी चर्चा बहुत की इस गाथा के प्रवचन में। जब पर को इसने ग्रहण ही नहीं किया है तो उनके त्याग का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, तो फिर क्या है त्याग? तो उन्होंने कहा कि उन पदार्थों को पर जानना पर यही प्रत्याख्यान है। तो ये क्यों प्रत्याख्यान है? ये पर को ग्रहण किया था कि हाँ ज्ञान ने ग्रहण किया था, ज्ञान ने क्या ग्रहण किया था कि उन्हें ये जाना था कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इनका कर्ता मैं हूं, इनका भोक्ता मैं हूं, ऐसा ज्ञान ने ग्रहण किया था, इसलिए अब त्याग भी यही करना है। काय का त्याग करना है कि ये मैं हूं इसका त्याग करना है, ये मेरे हैं इसका त्याग करना है, मैं इनका कर्ता धरता हूं इस बात का त्याग करना है, मैं इनका भोगता हूं इसका त्याग करना है। माने ग्रहण भी ज्ञान में ही किया था, इसलिए त्याग भी ज्ञान में ही होगा। लेने देने का कुछ काम नहीं है, ये सत्य जैसा व्यापार है। नहीं कैसा, मैं नहीं जानता था पहले कि हमने इतना खरीदा इतना बेचा, तुमने कहा माल है कहाँ, माल कहाँ है, यहाँ तो कोरा भाव ही भाव होता है बस। चांदी का सट्टा चलता था ना पहले, गेहूं का भी चलता था, कपास का भी। मैंने 100 गांठ कपास की खरीदी कि कपास रखोगे कहाँ, गोडाउन है कि नहीं बसंत भाई, कि गोडाउन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ माल कभी हाथ में आता ही नहीं है, अच्छा बुरा खराब होने का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ भाव में ही खरीदा जाता है और भाव में ही बेचा जाता है और उसमें ही लाखों के नारे बारे हो जाते हैं। ऐसे ही आचार्य देव ये कहते हैं कि पर पदार्थ तो अपनी जगह से हिला ही नहीं है, वो तेरी मालकी में कभी आया ही नहीं है, तूने तो सिर्फ उसे अपना जाना माना है, इसलिए तुझे त्याग भी उसे अपना जानने मानने का करना है। पर मैं तो कुछ करना ही नहीं है, पर मैं कुछ किया होता अभी तक तो अभी करने की बात थी, पर को तो तूने टच ही नहीं किया, क्योंकि आत्मा में एक स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है जिससे वो पर को छू सके, इसलिए वो त्याग ज्ञान में ही होता है। अब इसका स्वरूप क्या होगा, अभी तक जाना था कि ये मैं हूँ और अब ये जानना है कि ये मैं नहीं हूँ, इस जानने का नाम ही त्याग है। और उसमें एक बात कहता है पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में, और उसमें क्या लिखा है कि इसलिए स्वयं में स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अभिनंदन जी इसमें देखो इस किताब में बोल देता है, मैं छापा है मैंने इस बात को, गुरुदेव का वाक्य हो कि जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ पर प्रयत्न करते करते गुरुदेव ने जो वाक्य बोला तो उस पर मैंने उसे बोल्ड में छापा है, ये पेज नंबर 286। अभिनंदन जी इसलिए स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, मिला, ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भाव प्रत्याख्यान नहीं है। वो मोटा नहीं किताबें यहाँ रखी है, लोग देखेंगे हाथ में तो खरीद लेंगे, उसमें क्या है बाद में देखने को तो नहीं देना है दसी तो। देखो पेज नंबर 286 पर है, बहुत मार्मिक बिंदु है और गुरुदेव का है ये कोटेशन, जो कोटेशन नीचे लिखा ना प्रवचन रत्नाकर भाग 2 के प्रश्न नंबर 85 पर हिंदी में एक कोटेशन गुरुदेव का है।
भानुभाई इलेक्ट्रिक वाला पंखा बजा बंद कर दे, भानुभाई इलेक्ट्रिक वाला पंखा बजा बंद कर दे।
ये मूल बात तो सुनो, ये मूल बात तो जयचंद जी छाबड़ा की है, ये नीचे ही भावार्थ लिखा है इसी पेज के नीचे, देखो जो है ना आत्मा जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, आत्मा के प्रभाव के त्याग का कर्तृत्व है वह नाम मात्र ही है। मुकुंद भाई मिला, वह तो स्वयं ज्ञान स्वभाव ही है, परद्रव्य को पर जाना और फिर प्रभाव का ग्रहण नहीं करना ही त्याग है, इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव नहीं है। और इसी का गुरुदेव ने व्याख्यान करके ये बहुत विस्तार से प्रकरण वहाँ लिया है।
286
पेज नंबर
286
दो तीन व्याख्यान बहुत मार्मिक होंगे इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। क्या अंतर हुआ, मूल गाथा में था ज्ञान ही प्रत्याख्यान है और इसमें क्या कह दिया कि स्थिर हुआ ज्ञान, यानी ज्ञान में एक विशेषण लगा दिया बसंत भाई कि स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे ये रहस्य है कि प्रत्याख्यान तो चारित्र गुण की पर्याय है और जानना ज्ञान गुण की पर्याय है, तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान कैसे हो सकता है, आप समझेंगे ना, ये प्रश्न है। आचार्य तो ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, सुशीला से भी दी, मतलब एक ज्ञान गुण की पर्याय है और एक चारित्र गुण की पर्याय है, तो चारित्र गुण की पर्याय को ज्ञान गुण की पर्याय को चारित्र गुण कैसे कह सकते हैं, चारित्र गुण की पर्याय कैसे कह सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान नहीं, इसका आशय यह है कि स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है। ये तो आपने कई दफे मेरे मुख से सुना होगा कि जानना वह ज्ञान है अपने आत्मा को और जानते रहना वो ध्यान है, कंटिन्यूटी में, तो वहां भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि जानना ध्यान तो चातुर्ण की पर्याय है और लगातार आत्मा को जानते रहना, वो ध्यान कैसे हो सकता है? वो तो चार तरुण की पर्याय होना चाहिए। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि देखो प्रैक्टिकल थिंकिंग करो जरा आप, कि हमको आत्मा का ध्यान करना है तो क्या करना है, बोलो क्या करें? तो मैं आत्मा को जानो, कि जान लिया आप क्या करें? कि जानते रहो, हो गया क्या ध्यान? तो लगातार किसी चीज को जानते रहना, इसके अलावा और ध्यान क्या है? जब मैं ये कहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो सुनी तो कान से जाती है कि ज्ञान से जाती है? क्यों? या तो कान से सुनेंगे और या ज्ञान गुण से जाना जाएगा, यदि ज्ञान न जान न कहें। तो ध्यान कहां से आ गया, सहायत गुण कहां से आ गया सुनने में? तो उसका अर्थ ये होता है कि उपयोग को इधर लगाइए। उपयोग तो ज्ञान गुण है, तो प्रैक्टिकल में भी ज्ञान गुण का स्थिर होना, उसका नाम ही यहाँ पर ध्यान है, और उसी को यहाँ प्रत्याख्यान कह रहे हैं। तो वो ठीक है, प्रत्याख्यान भी तात्रुण की पर्याय है और ध्यान भी तात्रुण की पर्याय है, इसलिए कहते प्रकारांतर से दोनों का यहाँ एक ही अर्थ है। यदि और सरल करो इसे तो कहते यदि प्रत्याख्यान करना है तो भी उपयोग को अपने में स्थिर करना होगा, और यदि ध्यान करना है तो भी अपने को उपयोग में स्थिर करना पड़ेगा। तो ये दो नाम क्यों रखे? एक ही नाम रख देते फिर जगन्नाथ जी। तो दो नाम इसलिए रखे कि जब उसको पर पदार्थ के ग्रहण नहीं करना इस अपेक्षा से उसे देखा, तो उसका नाम रखा प्रत्याख्यान उसी चीज का, और उसी चीज को तो अपने में स्थिरता रूप में देखा, वितरागता की रूप में देखा, तो उसी का नाम ध्यान रखा। काम एक ही करना है, काम दो नहीं करना है, ख्याल में आया ना? लेकिन वो एक दो दृष्टिकोण दो हैं, तो अपने में स्थिर हुआ ज्ञान ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। तो क्या कहते, क्यों कह रहे हैं वकील साहब? मरम का बिंदु ये है, क्योंकि आज तक इस आत्मा का पर के साथ तो कोई संबंध स्थापित हुआ ही नहीं था, तो तोड़े क्या? नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्य आत्म तत्वयो, पर द्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन एक संबंध हुआ था। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना, ये तो स्टार्टिंग है। क्या क्या हुआ था? कि गे ग्यायक संबंध हुआ था, माने यदि पर के साथ इस भगवान आत्मा का कहीं कोई जुड़ाव हुआ तो वो जानना, ज्ञान का गे पर पदार्थ बने, कर्ता नहीं हुआ, कर्म नहीं हुआ, करण नहीं हुआ, सत्कारक संबंधी संबंध नहीं हुए, स्वामित्व नहीं हुआ, आप समझे ना? लेकिन एक इसके ज्ञान में आए थे, इसे बोलते ज्ञाता गे संबंध हुआ। तो जो संबंध हुआ उसी का तो त्याग होगा, जो और संबंध हुआ ही नहीं, क्यों? तो त्याग काय का होगा, बोलो? ए भाई साहब, बात ए मिनिस्टर जैसा काम है, एक चपरासी को निकालना हो ना, घबराना नहीं, तो महीना भर पहले नोटिस देनी पड़ती है, महीना भर की तनख्वाह देनी पड़ती है, और वो अदालत में जा सकता है तुम्हारे विरोध में। लेकिन किसी मिनिस्टर को निकालना हो तो एक घंटे के नोटिस में निकाल दिया जाता है। बेचारे मुरारजी देसाई को निकाल दिया था ना इंदिरा गांधी ने, उस वक्त मुरारजी देसाई ने ये शब्द बोले थे एक सेकंड में, और उसे तो चार्ज लिया जाता है, क्योंकि उसके पास एक टॉर्च होती है, एक चाबी होती है, एक झाड़ू होती है, वो चार्ज संभलवा के जाए। लेकिन मिनिस्टर को कोई चार्ज मार्ज नहीं देना पड़ता है, पर उसने कहा कि मैंने छोड़ा तो वही छूट गया, मैं झगड़ा करता हूं ना तो उसे कोई नोटिस देना पड़ता है और ना कोई चार्ज, क्योंकि चार्ज कुछ लिया हो तो वो सौंपे वापिस, तो उसे काम तो संभलवाना पड़ेगा ना गोसावी किसी को, कि काम करता हो तो संभलवाए, आज तक वो कुछ काम करता ही नहीं है तो छोड़े क्या? क्या बोले राजी, समझ गया ना? छोड़ना क्या, तुम करते क्या हो तो छोड़ोगे? तो भगवान आत्मा ने पर में कुछ किया हो तो छोड़े, ये तो मिनिस्टर जैसा बन गया था, मिनिस्टर जैसी चली गई, पता ही नहीं चला कब बन गया और कब छोड़ गया। ये सारा खेल ज्ञान ज्ञान में ही हुआ था, ज्ञान के अतिरिक्त तो आत्मा ज्ञान के बाहर निकला ही नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव की सीमा के बाहर भगवान आत्मा गया ही नहीं, पर को तो इसने छुआ ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि ग्रहण भी ज्ञान में ही हुआ था और त्याग भी ज्ञान में ही होगा, इसलिए ज्ञान प्रत्याख्यान है। एक अर्थ फिर कहते हैं कि वो ज्ञान, अब ध्यान से सुनना, ग्रहण किया था माने क्या, ज्ञान ने, ज्ञान का ग्रहण माने जान ने रूपई बसंत भाई, इससे ज्यादा ज्ञान का ग्रहण, ज्ञान ने ग्रहण किया माने क्या, सिर्फ जाना ही तो था और तो कुछ ग्रहण किया नहीं था, तो अब त्याग करना है तो क्या कि ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा जानना, इसका नाम त्याग हो गया। कि ये तो नेगेटिव बात हुई, कुछ काम पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, तो कहते उसको जानना बंद करके और अपने आत्मा को जानना करे उपयोग में और उसमें लगातार उसे जानता रहे तो इसका नाम हुआ स्थिर हुआ ज्ञान, इसी का नाम प्रत्याख्यान है। कितनी स्पष्ट बात है, ज्ञान प्रत्याख्यान का मतलब क्या समझे, और इसी का नाम ध्यान है, तो अपने में उपयोग स्थिर हो गया तो इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम तारित्र है, इसी का नाम धर्म है। ये आत्मा मैं हूं ऐसा जानने पूर्वक, ऐसी प्रतीति श्रद्धा पूर्वक अपने में उपयोग स्थिर होना, उसी का नाम तो चारित्र है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए इस गाथा की मार्मिक पंक्ति क्या है, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। पूरे 200 पेजों में मैंने इतना ही बोल्ड किया है, बाकी कहीं बोल्ड ही नहीं किया, कि मेरी दृष्टि में इसका कितना महत्व होगा अभय कुमार जी आप समझ सकते हैं। बाद में बहुत बहुत बढ़िया बहुत भी आई होंगी इसमें, क्योंकि ये बोल्ड टाइप में छापा कि इतना ही हिस्से को छापा बस दो लेनो, कहीं नहीं कहीं नहीं। वो जो गाथा है मोटे में आती है वो तो अलग बात है, ठंड आते हैं, लेकिन जो गद्य में जो बात है तो स्थिर हुआ ज्ञान उसका नाम प्रत्याख्यान है। क्या कहते हैं अब देखिए, इसी संदर्भ में मैं आपको बहुत मार्मिक बात जो गुरुदेव की है वो बताता हूँ। पेज नंबर 297 37वीं गाथा की प्रचन में है गुरुदेव की, गुरुदेव की बात पढ़ के बता रहा हूँ मैं। ये आधा पेज के बाद देखो, आत्मख्याति के भाव को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, मिल गया नहीं मोटा नहीं, बीच में बिल्कुल बीच में तो क्या कहते हैं स्वामी जी, चैतन्य की परिणति ऐसी प्रकाशमय है कि जिस उसका फैलाव विस्तार किसी से रोका नहीं जा सकता, समस्त पदार्थों को ग्रसने का अर्थात जानने का इसका स्वभाव है, चाहे वह शरीर हो, भगवान हो, मूर्ति हो, गुरु हो, शास्त्र हो, सभी गेयों को अपने स्वभाव से ही जानने का उसका स्वभाव है, सभी जीव अब जानने का इसका स्वभाव, ग्रसने का स्वभाव है अर्थात ज्ञान में जान लेने का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव समस्त पदार्थों को जानने का है, तथा ज्ञान का परमन गेय के कारण नहीं होता, वो गेय है इसलिए ज्ञान में जाना ये बात नहीं है। ये क्या क्यों कहना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो गेय के कारण जाना, गेय को गेय के कारण जाना तो जानना स्वभाव नहीं रहा। क्या समझ रहे हैं मुकुंद भाई, कि देखो ये बात जो पंडित जी ने यहाँ कही ना, ये जो गाथा ली है ये तो शांति भाई के कहने से ली, वो पंडित जी की नहीं रही, तो इतना भी नहीं, उन्हें अपने ही मन से ली तो वो मेरी कहलाएगी। आचार्य कहते हैं कि गेय को गेय के कारण यदि ज्ञान जाने तो ज्ञान का गेय को जानने का स्वभाव नहीं रहा, वो विभाव हो जाएगा। गेय ने कहा थोड़ा मेरे को जान ले, तो कैसे जान लेता हूं, निवेदन पे जाना ना, ख्याल में आया ना, तो वो जानना स्वभाव नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि गेय, गुरुदेव क्या लिखते हैं, गेय के कारण नहीं जाना, इसका क्या अर्थ है, नहीं जाना ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ है कि जानना उसका स्वभाव सिद्ध करना है। देखो ये दर्पण का उदाहरण दिया है, पढ़ लेना नीचे, फिर मैं पढ़ता हूँ एक पैरा छोड़ के, वो पढ़ लेना आप घर पर। उसी तरह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा की अपनी दशा, वो तो उदाहरण है ना, इसलिए मैं सिद्धांत पढ़ रहा हूँ, पर वस्तु को जानने का, ग्रहण करने का, ग्रसने का, प्रवेश करने का स्वभाव है, समस्त पदार्थों को जानने का ज्ञान परिणति का स्वभाव है, चाहे सर्वज्ञ परमेश्वर हो, समोसरण हो या मंदिर हो, इन सभी को अपने चैतन्य प्रकाश की सामर्थ्य से जानने का स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चित्तमान शक्ति से ग्रासी भूत होने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, इस प्रकार समस्त पदार्थ आत्मा में प्रकाशमान है। इसी को प्रवचन सार की 200वीं गाथा की टीका में कितना विस्तार से लिखा है प्रवचन सार यहाँ। उसमें लिखा वो कीलित हो गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो, डूब गए हो। प्रवचन सार है, निकाल लें 200वीं गाथा। इतना इतना गहराई से दिया है उन्होंने, भगवान आत्मा के ज्ञान स्वभाव का वर्णन किया है। अभी उसका फिर निषेध क्या है वो भी आएगा, घबराना नहीं। 200वीं गाथा में पढ़ता हूँ, देखो मैं अब इस एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, अमरचंद की मूल पंक्ति है, क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य ज्ञायक में त्रिकाली ध्रुव में उत्कीर्ण हो गए हों, उत्कीर्ण तो समझते कि नहीं, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हुए हों, इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है और ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण। क्यों ऐसा क्यों होता है सुकुमार, ये पदार्थ ज्ञान में घुस गए हैं, भीतर घुस गए, ऐसा क्यों लिखा, कीलित हो गए हैं, कीलित हो गए हैं माने ये भूत प्रेत लग जाते हैं ना किसी को, तो वो कील दो, फिर वहां से हटा ही नहीं सके, वो परेशान करने आ नहीं सके, तो केवल ज्ञान में भी पदार्थ कीलित हो गए, अनंत काल तक वैसे ही के वैसे झलकते रहेंगे, वहां से हटेंगे ही नहीं। क्यों हुआ भगवान जी, क्या लिखा इसमें, ज्ञेय ज्ञायक लक्षण की अनिवार्यता के कारण ऐसा हुआ। ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से, ज्ञायक को ज्ञेय से भिन्न करना अशक्य होने से, विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी ये भगवान आत्मा विश्व रूप कहलाता है, लेकिन ऐसा होने पर भी अपकुणा खाते हैं, सहज अनंत शक्ति वाले गायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता ये भगवान आत्मा, यानी अनंत गए उसमें झलक गए तो वो अनंत नहीं हो गया, एक पना उसका खंडित नहीं होता, इसलिए वो गए गायक संबंध भी होने पर भी उसमें रंच मात्र भी विकृति नहीं होती। अपन यहाँ पढ़ रहे थे ना, अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो, कहाँ पढ़ा था ख्याल है, तुम्हें 90 ईयर था ना, हाँ, अंतर्मग्न हो, इस प्रकार समस्त पदार्थ आत्मा में प्रकाशमान है। देखो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पदार्थ हैं, ये जगत की वस्तुएं हैं, ये सब गुरुदेव का चल रहा है कोटेशन, उन्हें केवली भगवान ने प्रत्यक्ष देखा जाना है, सर्वज्ञ परमेश्वर के सिवाय इन्हें अन्य किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। समय सार की 320वीं गाथा में तो यहाँ तक आता है, ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह बंध को भी जानता है, मोक्ष को भी जानता है, उदय को भी जानता है, निर्जरा को भी जानता है, वह तो मात्र जानता है, लो अब क्या बाकी रहा, स्वयं ज्ञान स्वभावी प्रभु है ना, उसके लिए उदय भी पर गए, बंध भी पर गए, निर्जरा भी पर गए, कर्म का छूटना भी पर गए, इसलिए आत्मा उदय बंध और निर्जरा और मोक्ष को मात्र जानता है, कर्तृत्व का निषेध है, जानने का निषेध नहीं। अब अनादि से आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक की सामर्थ्य वाला है, इस कारण जो ज्ञान पर को प्रकाशित करता है वह पर के अस्तित्व के कारण प्रकाशित नहीं करता, नहीं तो वो स्वभाव नहीं रहेगा, इसको सिद्ध करने के लिए इतना वजन दे रहा है बार बार। वास्तव में तो पर संबंधी अपना जो ज्ञान है उसे ही वह प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है माने क्या, जानता है नहीं क्या है? इसका अर्थ क्या समझते हैं आप, क्या अपने ज्ञान को प्रकाशित करता है, ये अर्थ है इसका, नहीं क्या अर्थ है देखो बताता हूं मैं, क्या अभी मैंने कहा देखो मोटानी आपके मन में क्या है मैं अभी हाल बताता हूं, अथवा आपकी जेब में कितने नोट है मैं अभी हाल बताता हूं, तो मैंने आपके जेब के नोट नहीं बताए हैं इस सारी जनता को, क्या बताया है कि देखो मैं कितना ज्ञानवान हूँ कि मोटानी के नोट जेब के नोट बिना देखे गिन सकता हूँ, तो मैंने अपने ज्ञान को प्रकाशित किया कि इनके नोटों को प्रकाशित किया, बोलो समझे ना, इसका क्या अर्थ समझे आप समझे कि नहीं समझे हैं? क्यों सुशीला श्री क्या लिखा देखो, पर संबंधी अपना जो ज्ञान है उसे ही प्रकाशित करता है, मैंने अपनी विद्युतता प्रकाशित की, मैंने आपके मन की बात प्रकाशित नहीं की, वो तो मैंने सिर्फ प्रकाशित करने के लिए आपके मन की बात का एक बहाना बनाया। देखो मैंने कहा, देखो भैया एक पेन लो भाई साहब, एक कागज पे वहां पर आप लिखो, कोई संख्या लिख लो 525 फिर मैं अभी यहां से बता देता हूं। और मैंने बता दिया तो आपकी संख्या बताई है कि मैंने अपना ज्ञान बताया? बोलो मोतीचंद जी, क्या क्या अभिनंदन जी समझ में आया कि नहीं? मैंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है ना, वो जादू वाला भाला आगे जादूगरी करता है कि नहीं करता है? कहो कहता देखो भाई साहब लिख लीजिए, ताश का पत्ता ले लीजिए, आप उठा लीजिए, ऐसा ले लीजिए, अभी मैंने यहाँ बता दिया कि चिड़ी का इक्का है, तो मैंने उसका पत्ता बताया है कि सारी जनता को अपना ज्ञान बताया है। तो वो कहते ज्ञान ने पर को जाना, तो उसने पर को प्रकाशित नहीं किया, अपनी पर्याय को प्रकाशित किया का मतलब क्या समझे? कि मेरी पर्याय में कितनी सामर्थ्य है ये बताया है उसने, उसको नहीं बताया है, ख्याल में है ना? क्यों यही अर्थ समझते हो आप इसको पढ़ करके? अरे समय सार अनुशीलन तो पढ़ना ही पड़ेगा, और उसको समझने के लिए मुझे अलग से बुलाना पड़ेगा। क्या उसे पढ़ने की विधि फिर अलग से बतानी पड़ेगी, नहीं तो ख्याल में नहीं आएगा क्या कहना चाहते हैं। आपके ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? क्या प्रकाशित किया है? देखो भाई, चैतन्य की सुपर प्रकाशक सामर्थ को जिसने जाना नहीं, जिसने अनुभव में उसकी सत्ता को स्वीकार किया नहीं, उसे धर्म भी कहां से हो और कैसे हो? लिखा क्या नहीं लिखा? कितना साफ लिखा। आगे देखो प्रश्न, यहाँ गे गायक भाव मात्र से ऐसा जो कहा उसका क्या तात्पर्य है? गे गायक भाव मात्र से ऐसा जो कह रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना? शिष्य का प्रश्न है कि तुम तो कहते कि वो जानता है बराबर, तो गे गायक भाव मात्र से जानता है, ऐसा कहने का क्या मतलब है? अरे कर्ता कर्म भाव से नहीं जानता, भोक्ता भोग भाव से नहीं जानता, ऐसा नहीं जानता मैंने तुम्हें किया, ऐसा नहीं जानता, ऐसा जानता है कि मैं तुम सिर्फ तुम्हें जानता हूं, ऐसा जानता है। ये ज्ञायक भाव मात्र से का अर्थ क्या? तो कहते सुनो, तात्पर्य यह है कि मैं ज्ञायक हूं और ये पर गे हैं, ये भी संबंध है, ये तो कहने मात्र का संबंध है, इसका मतलब जानता नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। पसंद भाई, कहने मात्र का संबंध, अभी बताता हूँ, इसको स्पष्ट करता हूँ, इसमें लिखा भी है, मैं मुंह के बोल के भी करता हूँ। कि हम रास्ते में दो जने जाते थे, बहुत जोर की प्यास लगी और कोई पानी पीने का साधन नहीं था और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो हमारे यहाँ ऐसी कहावत है खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। अब तो स्वास्थ्य वाले कहते हैं खाली पेट जितना पानी पी सको पियो, पहले जमाने में था खाली पेट, हमारे नन्हे पानी नहीं पीना, क्यों तुम्हारे यहाँ चलता था क्या? नहीं हुकुमचंद जी साहब, तो हमने कहा क्या करें कि यहाँ इस गांव में तुम्हारा कोई पहचान का है छाबड़ा जी, तो अपन चले तो कुछ थोड़ा नाश्ता फास्ता भी कर लें और पानी भी पी लेंगे। बोले हाँ है, अपनी रिश्तेदारी है, अपनी रिश्तेदारी है, संबंध यहाँ संबंध है। तो क्या संबंध है आपका बताओ तो मुझे, कि 10 साल पहले मेरा साड़ू इस गांव में एक पाड़ा बेच गया था, समझ आ गया? वो मेरा रिश्तेदार है क्या? ये रिश्तेदारी है, इनने नहीं बेचा था वो पाड़ा, वो भी इसके साड़ू ने बेचा था, और उस गांव में किसी आदमी को पाया, ये कोई संबंध है? ऐसे ही पर को आत्मा ने जाना, ये कोई आत्मा का पर के साथ संबंध है? आत्मा आत्मा में रहा और ज्ञान ज्ञान में रहा, और गे गे में रहा, ज्ञान गे में नहीं गया, गे ज्ञान में नहीं आया, अब संबंध ही हो गए? ये तो भैया कहने मात्र का संबंध है, इसका मतलब नहीं जाना ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन जानने मात्र को संबंध कहना, ये संबंध का अपमान है। इससे संबंधी हो गए, हमने जाना इससे संबंधी हो गए, कोई चीज को हमने जाना तो हमारी हो गई। अनादिकाल से आत्मा ने यही तो भूल की है कि जिस जिसको जाना उस पर अपना कब्जा, जिमेरी जिमेरी जिमेरी, ये आजकल ट्रेडमार्क चलता है, ये क्या चक्कर है? क्यों अमेरिका वाले कहते हैं ये हमारा कब्जा, क्योंकि हमने शोध की, हमने बौद्धिक संपदा, कितना बढ़िया नाम रखा उन्होंने आजकल, ये बौद्धिक संपदा है। तूने कोई चीज पहले बना ली, ये नीम है ना, नीमड़ा, अरे गुजराती तो रोजाना नीम खाते हैं, नीम के गुण को गुजराती लोग नहीं जानते, जानते हैं ना, रोजाना नीम की पत्ती दाल में दाल डाल के खाते हैं, हम भी किसी गए हम भी खाते हैं। अब अमेरिका कहता है कि नहीं, वो नीम की पत्ती तुम दाल में डालोगे तो उसका टैक्स हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पहले जान लिया कि इसमें दवाई के गुण है, हम इसका पेटेंट कर लेंगे। अरे तूने किसी पदार्थ को पहले जान लिया तो तेरे बाप का हो गया, आदिनाथ ने पहले लोकालोक को जान लिया तो उनका हो गया, अब महावीर का नहीं तो तुम्हारा नहीं है, तो मेरा पेटेंट है, तुम नहीं जान सकते, ये कोई बात हुई? हम जब जानेंगे तब जानेंगे। जानने मात्र से किसी का किसी पर अधिकार नहीं हो जाता, इसलिए वो कोई संबंध नहीं है। हमारी यही आदत है कि हम अकेले जानने तक सीमित कहां रहते हैं, जहां जाने वहीं जमने रखते हैं। हमारे यहां कहावत है, जहां मिली दो वहीं रहे सो, दो रोटियां मिल गई ना पेट भर गया तो आराम से वहीं सो गए, तो देखेंगे कल पेट खाली होगा दूसरा घर देखेंगे। जिसको जाना उसी में जम जाते हैं, वो तो जम जाना ये पाप है, उसको अपना जानना पाप है, उसको लगातार जानते रहना पाप है। ख्याल में आया ना, अपने आत्मा को अपना जानना ये धर्म है, लगातार जानते रहना ये महाधर्म है, ध्यान है, ये साक्षात मुक्ति का कारण है। पर के जानने से आज तक किसी को सुख नहीं हुआ, और जानन हारे जीव को भी, पर में सुख नहीं, कलष्टिका में लिखा ना, और जानन हारे जीव को भी सुख नहीं है। क्या मिला पर को जानने से तेरा, तो पर को जानना फिर मेरा बेकार है क्या? हाँ, तो फिर मैं नहीं जानू कि नहीं जानूंगा? सवाल क्या है? जानना तो भाई साहब तेरा स्वभाव है, मत जान, अपने आत्मा को जान, लेकिन जानने का निषेध तो कर, लेकिन जानने का निषेध मत कर। तू पर को मत जान ऐसा निषेध तो कर, लेकिन पर को आत्मा नहीं जानता है ऐसा निषेध मत कर, क्योंकि वो तो स्वभाव का निषेध हो जाएगा, और ये तो निषेध है ही। हम अपने बच्चे को कहते उधर मत जाना, उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या जरूरत है मंदिर में जाने की? मेरा अधिकार है मंदिर में जाने का, अधिकार को कौन चैलेंज करता है? तू दिगंबर जैन है, दिगंबर मंदिर है, तेरा दर्शन करने का अधिकार है कि नहीं है? लेकिन आज झगड़ा हो रहा है, तू वहां मत जाना, वहां फंस जाएगा। क्यों? तेरा नेचर खराब है, तेरे से चुप नहीं रहा जाएगा, तू बोले बिना रहेगा नहीं। तेरा नेचर ठीक हो तो मुझे जाने में कोई ऐतराज नहीं है, तेरे अधिकार को चैलेंज नहीं करता हूँ मैं, पर के जानने के अधिकार को चैलेंज नहीं करता हूँ। लेकिन नालायक तू अकेला जानता कहाँ है? जहाँ जानता है वहां राग द्वेष किए बिना रहता नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ जा नहीं मत, ऐसा निषेध करना, क्योंकि नहीं करेगा तो आत्मा में उपयोग जाएगा कैसे? डट के निषेध करना। काय का निषेध करना अरविंद कुमार जी? पर के जानने का। और निषेध काय का नहीं करना? पर को जानने का। एक ही वाक्य तो बोलते, हमारी समय तो अंतर आता ही नहीं अनंत भाई, हैं? हैं? अंतर है, अंतर है, समझ लो ना। एक स्वभाव जानने के स्वभाव का निषेध नहीं करना, जानने का निषेध करना, क्योंकि ये जीव जहाँ जाता है वहाँ राग द्वेष किए बिना रहता नहीं है। मैं तो इसको और एक उदाहरण देता हूँ, नए नए लोग भी तो बहुत हैं, अकेले शांति भाई के लिए थोड़ी व्याख्यान कर सकता हूँ, सबके लिए करना है मेरे को, कहता है ना है? कि मैं शिखर जी जाने का विचार था, तो लोग मोहल्ले वालों को पता चला तो पंडित जी आप शिखर जी जा रहे हैं? मैंने कहा जा रहा हूँ, हमारी अम्मा को भी ले जाओ, ले जाएंगे। ऐसे होते होते शाम तक 25 अम्माएं मेरे साथ हो गई, अकेला पंडित और 25, कोई 60 वर्ष की, कोई 70 वर्ष की, कोई 80 वर्ष की, लाठी लिए, कोई एक आंख वाली, कोई दो आंख वाली, कोई तेरी कमर वाली। मैंने कहा इतनी अम्माओं को घेर कर मैं कैसे जाऊंगा शिखर जी? मैं घबरा गया, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। अरे क्यों? तुम्हारे माथे पे जाएंगी क्या ये? मैंने कहा भैया मैं तो इनको भी ले जाऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा, तुम भी चलो साथ। कह नहीं नहीं हमें तो काम है। मैंने कहा तुम्हें काम है, औरतों को कोई काम नहीं है, इसलिए औरतें देखो तुगनी, आदमियों से तुगनी होते हैं, भगवान महावीर के समर्थन में भी तुगनी थी, आदमी 1 लाख तो औरतें 3 लाख थी, क्योंकि आदमियों को तो काम है, बेकाम की तो बेचारी यही है। तो मैंने कहा ऐसा करो कि अम्मा के साथ अपनी तुम बहू को भी भेज दो, पत्नी को भी भेज दो, बेटे की बहू को भी भेज दो, फिर मैं ले जाऊंगा। क्या पंडित क्या बात करता हूं, शर्म नहीं आती तेरे को? अम्मा को मेरे साथ भेजने को तैयार और पत्नी को भेजने में अरे शर्म आने लग गई। कैसी हालत है जरा विचार करना, बहू को अकेली मंदिर में भी नहीं भेजती है सास, वो बहू इतनी होशियार है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई, पोस्ट ग्रेजुएट है। आज के लड़के कहाँ पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लड़के तो ग्रेजुएट हो जाए तो बहुत, बहुएं पोस्ट ग्रेजुएट होती हैं, और इतनी होशियार हैं कि अकेली सारी दुनिया घूम के आ जाए, लेकिन सास अकेली मंदिर नहीं जाने देती है। मैंने कहा बहू को तो अकेले गाँव के मंदिर नहीं जाने देती है, और सासू को जो बेचारी बिना सहयोग के गांव के मंदिर भी नहीं जा सकती है, एक आदमी की उसे जरूरत है साथ में, लाठी की जरूरत है, उसे अकेली शिखर जी भेजने को तैयार है, क्या बात है? तो पंडित जी आप समझते तो हो नहीं। मैं कहा समझा दे, एक ही धंधा है समझने का, समझा देगा, तू समझा दे मेरे को। बोले एक साल मेरी बहू को आए हुआ है और ये मंदिर में अकेली गई और किसी ने भड़का दिया तो घर में दो चूल्हे हो जाएंगे, साल दो साल तो एक चूल्हा रहने दो, इसलिए मैं एक मिनट बहू को अकेली नहीं छोड़ती, साथ में जाऊंगी, अपनी बेटी को साथ में भेज दूंगी, किसी ना किसी को साथ में 24 घंटा उसकी ड्यूटी रखता हूं, क्योंकि कोई उसे भड़का ना दे। तो मैंने कहा अम्मा जी को अकेली मंदिर क्यों भेज, अम्मा जी को कोई भड़का देगा तो? कहे अम्मा जी को कोई क्या भड़काएगा, अब तो वे भड़काने वालों में शामिल हो गई। तो जिनके भड़कने का कोई डर नहीं है वे अकेली कहीं भी जाए हमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जिनके भड़कने का डर है उन्हें अकेला मत जाने दो। तो जिनको पर में रमने रमने का भय नहीं है, जो बीतरागी हो गए, ऐसे सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जाने तो हमें कोई भय नहीं है, जानने दो। लेकिन हम तुम तो ऐसे रागी देसी हैं कि जहाँ जाते हैं वहीं जम जाते हैं, क्या ख्याल में आया? तो ऐसे लोगों को नहीं जाने देना ही अच्छा है। जानने का निषेध समझेगा नहीं, जिस गए को जानेंगे, बस जहाँ जाते हैं वातावरण बहुत अच्छा है, हरियाली बढ़िया बढ़िया, एक बंगला यहाँ भी ले लो, फिर बंगला आगे झाड़ते नहीं है, आगे देखते नहीं है, बंद रखते हैं, एक बंगला है। जयपुर आते एक बंगला यहाँ भी ले लो, सोनगढ़ गए तो एक बंगला वहां भी बनवा दो, धर्म सर वो बंगला धर्म करेगा, वहां सेठ जी धंधा करेंगे, बंगला धर्म करेगा। जहाँ जाता है प्रकृति की सुंदरता, वातावरण बढ़िया। अरे देखिए पैसा बहुत है अनाप शनाप, हम समझते हैं धर्म कर रहे, शेठ जी ने गरीब 10 लाख यहाँ कर दिए, लेकिन शेठ जी समझते अरे इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख हो जाने वाले। मैंने हमने खड़े होकर के जयपुर में फ्लैट बनवाए, खड़े होकर के ऐसा करके अभी 25 परिवार रहेंगे, 50 आदमी हमारे प्रजन में बढ़ जाएंगे, ऐसा रह के। ये पंडित हुकुमचंद ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने लिए एक शब्द नहीं सोचा, लेकिन सेठियों के बंगले खड़े रह के बनवाए, इन्हें ताला ही नहीं खोला कहीं तो आज तक 10 साल से। कहते पंडित गालियां देता, क्या करें, गालियां नहीं दूं तो क्या करूं, इनकी प्रशंसा करूं, ताला नहीं खोला एक दिन। अरे भाई हमें चाबी दे दो तो दूसरे लोगों को ठहरा दें धर्म धर्म लाभ लेने के लिए, क्यों मुकुंद भाई? लेकिन चाबी भी नहीं देते, क्यों? फर्नीचर बना लिया। तो मैंने कहा हम क्या फर्नीचर पे बैठना नहीं जानते? नहीं जानता है भाई, फर्नीचर वालों कमरे में नहीं ठहर सकते क्या हम? शांति भाई ठहर सकते है ना? नहीं, फर्नीचर वाला कोई नहीं खोलता बिना फर्नीचर वाला। मैंने कहा हे भगवान अगली साल को इस बंगले में फर्नीचर न बनवा ले, इधर ही नहीं मिलेगा। सोचो आप जहाँ गए वहीं रम गए, जहाँ गए वहीं खरीदना है इसको, यहाँ खरीद बिक्री। तो ऐसे लोग कहते तू जाए ही मत, तू घर से बाहर निकले ही मत, अपने उपयोग को बाहर निकाला ही नहीं रमणिक भाई, आप ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए जानने के पर के जानने का निषेध है, कौन कहता निषेध नहीं है? है, लेकिन ऐसा निषेध है, सुनो आगे देखो, गुरुदेव का पढ़ रहे थे ना अपन, यहाँ ऐसा जाने उसका तात्पर्य यह है कि मैं गायक हूँ और ये परगेय हैं, यह तो कहने मात्र का संबंध है, इसकी व्याख्या करने लगे थे ना अपन। ऐसा गेय गायक संबंध होने से पर द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा ज्ञान होता है, परंतु प्रगट स्वाद में आने पर, यह बहुत मार्मिक है, स्वाद भेद के कारण ये मुझसे भिन्न है ऐसा ज्ञान भी होता है। कितने गजब की बात है, मेरी आत्मा का स्वाद अतीन्द्रिय आनंद है जबकि धर्मासी काय आदि गे पर गे मुझसे भिन्न है। जानने जानने में फर्क है, क्या फर्क है बाबूलाल जी? कि जब मैं अपने आत्मा को जानता हूं तो उसमें आनंद की झरना झरता है, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगती है, और जब इसको जानता हूं तो कुछ नहीं आता है, अग्नि को जानता हूं तो गर्मी लगती है, बर्फ को जानता हूं तो ठंडक लगती है, आनंद नहीं आता है, समझे ना? स्त्री को जानता हूं तो राग होता है, पुत्र को जानता हूं तो राग होता है, शत्रु को जानता हूं तो द्वेष होता है, आनंद नहीं आता है, और त्रिकाली ध्रुव को जानता हूं तो ख्याल को जानना, फिर ख्याल में आ गया ना? जान जिसके स्वाद में भेद है, क्या लिखा? पर के जानने में और अपने जानने में क्या है स्वाद में भेद है, इसलिए मुझे भिन्नता ख्याल में आ जाती है कि ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, ये आंख का चश्मा कौन निकालता है? डॉक्टर नंबर निकालता है चश्मा का नंबर? कोई डॉक्टर लोग निकालते हैं क्या? अपन निकालते हैं, सच बोलना। डॉक्टर क्या जानता है, वो तो मूर्ख जैसा हमसे पूछता है, ए अच्छा के ए अच्छा के ए, ए। तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ? और हम जिसको अच्छा कह रहे थे कहते ठीक है ठीक है, लगा दिया नंबर, बोल दे दिया, लाओ मेरे 50 रुपए, तेरे 50 रुपए काट के नंबर मेरे निकाल। डॉक्टर को क्या दिखता है, नंबर तो हमने निकाला ना। तो तूने आत्मा को जाना तो आनंद आया, पर को जाना तो दुख आया। तो जिसको जानने में से दुख आया ये मैं नहीं, जिसमें से आनंद आया वो मैं। स्वाद भेद है कि नहीं लिखा ना? स्वाद भेद है भाई साहब, पर को जानने में आनंद का अतिंद्रिय आनंद का स्वाद कहां से आएगा? नहीं आएगा तो जानने को क्या करना पे? पूरा मरने के लिए जाना क्या? फिर जानने से क्या करना मुझे आप बोलो? इसलिए कहते देखो भाई स्वाद भेद है। लिखा आगे, अहा भगवान के द्वारा देखे जाने गए धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय आकाश काल अन्य जीव व कर्म आदि पुद्गल द्रव्य ये सब पर गए हैं, और मैं तो ज्ञान स्वभाव में स्थित ज्ञायक अतीन्द्रिय आनंद से भरा हुआ भगवान हूँ। वस्तुतः बात यह है कि आत्मा स्वभाव से ही सुपर प्रकाशक है, अतः वह स्वभाव से ही स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। वह पर को पर के कारण नहीं जानता, अपितु अपने स्वभाव के कारण ही जानता है। ऐसा होने पर भी जो पदार्थ सहज ज्ञान में ज्ञात होते हैं, ध्यान से सुनना, अज्ञानी जीव उन्हें भी अपना मान लेता है। वे तो सहज ज्ञान से झलकने में आए। ऐसा एक छंद आया है बहुत बढ़िया बना भागचंद जी कवि का है ना, जिन्होंने महाविरष्टा का स्तोत्र लिखा, भूमि न होते चांदनी की ज्यों त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी, गगन दहन दहत पर गगन न तद गते गगन दहन ताकी विधि हानि। क्या अर्थ है इसका? देखो, भूमि न हो तो चांदनी की ज्यों, चंद्रमा की चांदनी जितनी जमीन पे पड़ गई वो जमीन चंद्रमा की हो जाती है क्या? क्या चंद्रमा है प्रकाशक और जमीन है प्रकाश, समझ गया ना? लेकिन वो जमीन चंद्रमा की नहीं हो जाती है। तो क्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी, गे को जानने वाला गेयों का धनी माने मालिक नहीं है। कितना लिखा, यदि वो मालिक है तो चंद्रमा की चांदनी हो जाने जमीन हो जाना चाहिए। जहां जहां चांदनी पड़े वो जमीन सब चंद्रमा की हो जाना चाहिए, और फिर हम जिस पदार्थ को देखें वो हमारा हो जाना चाहिए। क्यों, मैंने ये स्पीकर देखा वो मेरा हो गया, भाई उठा के चल दू, ले जाने देंगे आप? क्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी, ज्ञानी माने धर्म दृष्टि नहीं है यहाँ, ज्ञानी माने गे के साथ जिसका जानने का संबंध है। भाई साहब उसका नाम भी ज्ञायक ज्ञानी गेयों को जानने के कारण ही पड़ा है। जैसे इसका नाम मामा क्यों भांजे की अपेक्षा पड़ा है, इसका नाम चाचा क्यों भतीजे की अपेक्षा पड़ा है, इसका नाम पति क्यों पत्नी की अपेक्षा पड़ा है, ऐसे ही गे की अपेक्षा उसका नाम ज्ञानी पड़ा। लेकिन वो जानने मात्र से जिसको जाना उसका मालिक नहीं हो जाता। तो किसका है कि जो उसका है भगवान आत्मा वो उसका ही रहता है, जिसको जानने से उसका नहीं हो जाता, माने कोई संबंध नहीं हो जाता। जानना ये कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी लिखा है मैंने साफ साफ इसमें। देखो, अज्ञानी जीव उन्हें अपना मान लेता है, उनमें अपनत्व स्थापित कर लेता है, उनमें ममत्व कर लेता है, वह उनसे निर्ममत्व नहीं रह पाता है। किंतु ज्ञानी धर्मात्मा यह अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मादि द्रव्य रूप पर पदार्थ मेरे नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्वभाव से भिन्न है। मैं तो टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी स्वयं के लिए अंतरंग तत्व हूँ, ये मुझसे भिन्न बहिरंग तत्व है। आचार्य देव कहते हैं कि भले ही, ध्यान से सुनना, ये ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो, क्या शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए कि ऊपर ऊपर से जान रहे हो, क्या लिखा, तदाकार होकर डूब रहे हो, आनंद अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो, तथापि ये मेरे नहीं है, ऐसा बिल्कुल उसके अंदर विद्यमान भेद विज्ञान रहता है, इसलिए उसको कोई बंध नहीं होता। दूसरी बात यह है कि यद्यपि स्व और पर दोनों एक समय में ही ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, तथापि दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न स्वाद के कारण मैं धर्मादि जीव द्रव्यों से एवं मेरे से भिन्न जीव द्रव्यों के प्रति पूर्णता निर्मम हूँ, क्योंकि मैं एकत्व को प्राप्त होने से सदा ज्यों का त्यों ही स्थिर हुआ ज्ञान स्थिर रहता हूँ, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। बस लगाना ज्यों का त्यों पर मैं अपनापन टूटना, एकत्व टूटना और अपने में अपनापन आना, एकत्व आना ही गे भाव से भेद विज्ञान होना है। देखो अब अंत में प्रश्न बहुत मार्मिक है, पर पदार्थ के पास जाए बिना और पर पदार्थ भी पास में आए बिना ही ज्ञान का स्वभाव पर को जानने का है। इस जानने का पर के साथ कोई संबंध नहीं है, इस जानने का, क्योंकि पर को जानना भी तो आत्मा का स्वयं का ही स्वभाव है। ख्याल में ना, तुम्हारे कहने से थोड़ी जाना है उसने। अब कहते प्रश्न, यह क्या बात हुई, जब हमने पर को जाना और पर पदार्थ हमारे ज्ञान में आया तो गे ज्ञायक संबंध तो हो ही गया। तुम कहते कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, जबरदस्ती जब हमने उसे जाना और वो हमारे जानने में आया तो गे ज्ञायक संबंध तो हो ही गया, आप इस गे ज्ञायक संबंध से क्यों इनकार करते हो। उत्तर, भाई समझने की कोशिश करो, यद्यपि इसे गे ज्ञायक संबंध कहा जाता है पर इसमें संबंध की क्या बात है। गे गे में रहा, ज्ञान ज्ञान में रहा, ज्ञान गे में नहीं गया, गे ज्ञान में नहीं आया, जब दोनों पूर्ण स्वतंत्र ही रहे तो फिर किस बात का संबंध। संधि भाई लिखा कि नहीं लिखा, फिर लिखो केवली भगवान का लोकालोक से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछता हूँ। यही ना कि लोकालोक केवल ज्ञान में झलकते हैं और केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, पर इतने मात्र से केवली भगवान किसी के संबंधी तो नहीं हो जाते। वे तो जगत के से पूर्णता असंबंधित ही रहते हैं, उन्हें जगत से असंयुक्त ही माना जाता है। केवली के समान सभी ज्ञानी, ऐसा नहीं केवली तो वितरागी है इसलिए रहते हैं, इसी के सभी ज्ञानी जगत से असंयुक्त ही हैं। यद्यपि गे ज्ञायक संबंध को संबंध कहा जाता है पर यह कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं है। गे भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, यह जानना ही गे ज्ञायक से भेद विज्ञान है। बस यही भाव इस गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। शंकर दोष निकाल दिया, गे ज्ञायक शंकर दोष निकाल दिया। अभी देखिए अपनी बात तो 38वीं गाथा की चलती है ना, इसमें देखो बहुत ही मार्मिक है, पेज नंबर 304 पर सबसे नीचे की तीन पंक्तियां देखो बहुत मार्मिक है, इस तीन पांच पंक्तियां नीचे की देखो। इस प्रकार सबसे भिन्न निस्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ, इस प्रकार प्रतापवंत बरतते हुए मुझ में, ये आत्मख्याति टीका का अनुवाद है, बिल्कुल पक्का अक्षर टू अक्षर। इस प्रकार प्रतापवंत बरतते हुए मुझ में मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा, क्या है जरा, मेरी विचित्र स्वरूप संपदा, क्या है तेरी विचित्र स्वरूप संपदा भी बताऊंगा। देखो यद्यपि बाह्य समस्त पदा पर द्रव्य स्फुरायमान है, मेरे में बाह्य समस्त पर पदार्थ स्फुरायमान है, काय के द्वारा, मेरी स्वरूप संपदा के द्वारा, वो उनके कारण नहीं। छगनलाल जी पढ़ा, मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है तथापि मुझे कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं, माने भासते तो हैं पर मुझ रूप नहीं भासते हैं। कहते हो कोई दिखाई नहीं देता, सब दिखाई देते हैं लेकिन कोई अपना दिखाई नहीं देता। बोलते नहीं बोलते, मैं तो इसको उदाहरण देता हूँ कि राजकोट से सबसे पहली दफे बेटा बंबई जा रहा था, अब तो वो जमाना गया, अब तो अमेरिका पहली दफे जा रहा था, ऐसी बात करो क्यों। लेकिन अभी उदाहरण तो पुराने जमाने का चलेगा ना, क्यों रिजर्वेशन होता नहीं था, तो पिता धक्का मार के एक डब्बे में मुश्किल से घुसड़ के आया बेटे को, और घर पर आकर बैठ के उदास बैठा, पत्नी ने पूछा क्या है, कि बेटा अकेला बंबई गया है पहली दफे इसलिए बहुत चिंता हो रही है। तो दो मिनट बाद कहता है डब्बे में इतनी भीड़ थी कि खड़े रखने को जगह नहीं थी, खिड़की में से अंदर डाला है। तो पत्नी कहती पागल हो गए हो, अभी तो बेटा एक स्टेशन ही नहीं गया होगा और तुम पागलपन की बातें करने लग गए। क्या पागलपन की बात करी, कि अभी कहते अकेला गया और अभी कहते इतनी भीड़ कि पैर रखने को जगह नहीं थी, यदि भीड़ थी तो अकेला कैसे गया। और अकेला गया तो भीड़ का क्या काम, कि तू समझेगी नहीं, 2 साल जयपुर पढ़ के आया तो समझ में आएगा तेरे। इसमें पढ़ने की समझने की क्या बात है। अरे भाई भीड़ तो बहुत थी, लेकिन जिसे हम अपना कहें ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। तो भीड़ में भी अकेला हो सकता है कि नहीं? ऐसा अनंत गे मेरे ज्ञान में झलकते हैं और मेरा कोई नहीं है, ऐसा ज्ञान होने से उसका एकत्व टूटता नहीं, अकेलापन नहीं टूटता, दो नहीं बनते, क्योंकि मुझको मुझ रूप कोई भाषित नहीं होता। लिखा ना, अनंत के भाषित होते हैं लेकिन मुझ रूप भाषित नहीं होते। तो भैया भाषित ही नहीं होते, क्यों? कि मुझे तो मुझ रूप भाषित हो तो भाषित होना लगे। भाई साहब यूनिवर्सिटी में हर साल हजारों विद्यार्थी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, नहीं होते? क्योंकि यूनिवर्सिटी हजारों है, एक एक यूनिवर्सिटी में 100-100 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में एक गोल्ड मेडलिस्ट होना क्या नहीं होना, बोलो? तो हजारों गोल्ड मेडलिस्ट निकलते हैं क्या नहीं, और अखबार में उनका नाम और फोटो आते हैं, कितना आनंद आता है आपको? तो अपना बेटा गोल्ड मेडलिस्ट होता है तब आनंद लगता है, कहाँ आता है कि नहीं आता है? गोल्ड मेडलिस्ट होने का आनंद नहीं है, आनंद काहे का है? अपने बेटा का गोल्ड मेडलिस्ट होने का आनंद है। ये लोकालोक भाषित हो उसमें कोई आनंद नहीं है, जो मुजरूप भाषित हो आनंद उसमें से आता है। मुझे कोई मुजरूप भाषित होता ही नहीं, मैं तो अकेला ही अकेला हूँ, सारा लोकालोक मेरे ज्ञान में झलक है, लेकिन मुझे कुछ मुजरूप भाषित होता ही नहीं है। जयपुर क्यों नहीं आते मुकुंद भाई? कैसा, हम आते तो हैं लेकिन मजा नहीं आता है। क्यों? कि मेरा देवलाली में व्याख्यान अच्छा होता है, जयपुर में खराब होता है। नहीं नहीं, व्याख्यान तो आपका अच्छा ही होता है, क्या? पर हमें कोई गुजराती वहाँ दिखाई देता है, और इसके ज्ञान का देख गुजराती बने तो इसे आनंद आए, तो हम क्या करें? खैर ना, क्यों? कोई निज रूप भाषित नहीं होता। आनंद तो निज रूप भाषित होने में है, पर यदि पर पदार्थ निज रूप भाषित हो जाए तो अनंत दुख हो जाएगा, अपना आत्मा निज रूप भाषित हो तो अनंत सुख हो जाएगा। अपने में अपनापन भाषित होना है आनंद का कारण। तो मैंने रतन लाल जी साहब से कहा कि आपने लाड़नू में मंदिर बना दिया, दिल्ली में बनाया होता इतना ही ऐसा मंदिर जैसा लाड़नू में बनाया है, ऐसा दिल्ली में बनाया होता तो हजारों टूरिस्ट आते, क्यों? ऐसे तो झाड़ू लगवाना मुश्किल पड़ता है ना, वहाँ टिकट लगा देते ना, उस टिकट में झाड़ू लगना तो बहुत दूर की बात, एक नया मंदिर बन जाता, क्यों? सच्ची बात है क्या? नहीं तो क्यों नहीं बनाया दिल्ली में, क्यों बनाया लाड़नू में? मेरा गांव, मेरा गांव, मेरा गांव, क्यों होता है कि नहीं होता? मेरा गांव, मेरापन होता कि नहीं? तो अपनापन भाषित होना वो अलग बात है और भाषित होना वो अलग बात है। ज्ञान का गे लोकालोक बन जाए उसमें आनंद नहीं आता है, जब तक उसमें अपनापन नहीं आया है तो आनंद की प्राप्ति होती नहीं। क्या लिखा था देखो, तथापि मुझे परद्रव्य अणु परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं, कि जो भावक रूप और गे रूप से मेरे साथ होकर मुझ में पुनः मोह उत्पन्न करे। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझको अपने रूप भाषित नहीं होते हैं, तो जानूंगा भी तो भी मोह उत्पन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि निज रस से ही मोह को पुनः अंकुरित न हो इस प्रकार मूल से ही उखाड़ कर नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। मुझे कोई डर नहीं, लोकालोक मेरे ज्ञान में झलके मुझे कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है डर तेरे को? अभी कल इसका विस्तार से करूंगा थोड़ा अभी। क्यों नहीं है डर? कि मुझे मुझ रूप भाषित नहीं होते। भाई साहब डर कब हो? कि मेरे ज्ञान में आवे हो, मुझ रूप भाषित हो। तो क्यों नहीं भाषित होते? क्योंकि मैंने भेद विज्ञान के बल से, आत्मा के अनुभव से ऐसा ज्ञान प्रकाश प्रकट कर लिया है कि उसमें अनंत पदार्थ ढलके तो भी मुझे वे मुझ रूप भाषित नहीं होंगे, तो मुझे कोई खतरा नहीं है। तो खतरा किनको है? जैसे सर्वज्ञ को भाषित नहीं होते, ऐसे ज्ञानी को भाषित नहीं होते, इसलिए ज्ञानी को खतरा नहीं है, और अज्ञानी को भाषित होते हैं कैसे? मुझ रूप, इसलिए उसे खतरा ही खतरा। खतरा काय में है? उनका ज्ञान में आने में खतरा नहीं है, वो गे रूप, वो निज रूप भाषित हो, खतरा इस बात में है।